Many voices from the world in which we live tell
us. जिस विषय में हम रहते हैं वहाँ इसमें बहुत से लोग कहते हैं हमें तेज रफ्तार से जीना चाहिए, हमेशा कुछ अधिक करने की और अधिक पाने की जरूरत होती है, तो भी हम में से प्रत्येक को अपने भीतर गहराई में एक आश्रय स्थल की जरूरत होती है जहाँ शांति और संतुष्टि प्रबल होती है। ऐसा स्थल जहाँ भविष्य की दबावों की तैयारी के लिए हम पुनर्व्यवस्थित होते हैं, संभलते हैं, शक्ति पाते हैं। ऐसी शांति का आदर्श हमारे घरों के चारों दीवारी के भीतर होता है जहाँ हम अपने प्रभु यीशु मसीह को महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए सब कुछ किया है। कुछ घरों में पिता होते हैं जो एक योग पौरित्य धारक होते हैं, जिनके साथ विश्वासी निष्ठावान माँ होती है, दोनों एक साथ मिलकर दैनिकता से धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से घरों में यह परिस्थिति भिन्न होती है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने घर में आपके जीवन में यीशु मसीह पर केंद्रित हो सकते हैं क्योंकि इसी जीवन की शांति का स्रोत है। निश्चित करें कि आप निर्णय लेते हैं, चाहे संसारिक हो या आत्मिक, इस पर निर्भर हो कि उद्धारकर्ता आपसे क्या करवाना चाहता है। जब वह आपके घर का मुख्य केंद्र होता है तो वहां शांति और संतुष्टि होती है। थोड़ा बंद कर। मासूम की जाती है। इस सलाह का पालन करना केवल माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, यद्यपि मार्गदर्शन करना उनकी भूमिका होती है। बच्चे मसीह केंद्रित घर में सुधारों करने के लिए प्यास के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। माता पिता के लिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि कैसे उनके काम घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। बच्चे जिन्हें कामों चाहे धार्मिक हों या अध्ययन अन्य प्रकार के प्रति उत्तरदायी बनना चाहिए, वे बड़े होकर राज्य के विश्वसनीय नागरिक बनते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आप उन मूलभूत सिद्धांतों को पहचान सकते हैं जो आपके घर को मसीह के पर केंद्रित करते हैं। भविष्यवक्ता की सलाह, प्रतिदिन व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना करना, प्रतिदिन व्यक्तिगत और पारिवारिक धर्मशास्त्र अध्ययन करना, साप्ताहिक पारिवारिक सलूक संध्या करना एक मसीह केंद्रित करने के जरूरी है। बिना इन नियमित कामों के किए इस संसार में अति आवश्यक शांति कायम करना अति कठिन है। भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं की प्रति आज्ञाकारी रहें, जिनके पालन करने में मसीह का वापस करते हैं, मसीह के सुसमाचार को लागू। याद रखें, शॉर्टकट लेने से अपने भविष्य की गुणवत्ता को कम ना करें। याद रखें, छोटी बड़ी बातों की ओर ले जाती हैं। छोटी से दिखने वाली लापरवाहियां या गलतियां बड़ी समस्याओं की ओर ले जा सकती हैं। सरल नियमित अच्छी आदतें जीवन को भरपूर आशीषों की ओर ले जाती हैं। आप प्राथमिक के बच्चे हों, युवा कार्यक्रम के युवा और युवतियां, और निर्भीक प्रचारक जो मुझसे अधिक प्रभावी बहुत से काम कर रहे हैं जो मैं आपकी आयु में कर पाता था। पृथ्वी से रहने से पहले आप बहादुर, आज्ञाकारी और पवित्र साबित हुए थे। वहां आपने पृथ्वी के जीवन की साहस का सामना करने के लिए गरिमा, सम्मान और सफलता से प्रतिभाओं और क्षमताओं को विकसित करने में कठिन परिश्रम किया था। उन सभी शानदार क्षमताओं के अंतहीन समय के साथ आप इस चीज पर आए हो, फिर भी आपके पास वातावरण में असली खतरा है। आपकी महान संभावना और योग्यता सीमित या नष्ट हो सकती है यदि आप झुकाव आप अपने आसपास शैतान प्रेरित भ्रष्ट कामों के प्रति होता है। यद्यपि शैतान का उद्धारकर्ता के साथ कोई मेल नहीं है, शैतान की नियति निश्चित है। वह जानता है वह हार चुका है, लेकिन वह उसके साथ अपने साथ बहुत से लोगों को ले जाना चाहता है। वह आपकी कमजोरी का लाभ उठाकर आपकी सच्चाइयों, अच्छाइयों और योग्यताओं को दूषित करने का प्रयास करेगा। प्रभु की तरफ रहें और हर बार आप विजयी होंगे। आप ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां तकनीकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। मेरी आयु के बहुत से लोगों के लिए इसके साथ काम करना वाला बहुत कठिन है। ये विकास, आशीष और साप हो सकते हैं, यह निर्भर करता है कि आप किस कैसे इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। तकनीक जब ठीक से समझी और सही उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है तो इससे कोई खतरा नहीं होता, बल्कि इससे आत्मिक बातचीत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, हम में से बहुतों के पास एक व्यक्तिगत उपकरण है जो हमारी जेब में आ सकता है। इसके बिना हम शायद ही कहीं जाते हैं। एक दिन हम कई बार इसका उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से ये दो उपकरण गंदगी या समय की बर्बादी का स्रोत भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अनुशासन से उपयोग किया जाए तो यह तकनीक समाज की बुराइयों से सुरक्षा का हथियार हो सकती है। कुछ वर्ष पूर्व तक कौन कल्पना कर सकता था कि संपूर्ण धर्मशास्त्र और वर्षों के महासम्मेलन संदेश आपकी जेब में आ सकते हैं। केवल इन्हें जेब में रखने मात्र से आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती, लेकिन शांत पलों में प्रतिदिन इनका अध्ययन, मनन और सुनने से आत्मा से बातचीत करने में वृद्धि होगी। आप तकनीक का उपयोग करने में समझदार बने। अपने उपकरण में महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों को चिन्हित करें और निरंतर इनके संदर्भ करें। यदि आप नौजवान लोग धर्मशास्त्र की एक आयत को और वैसे ही ध्यान दोगे जैसे आप टेक्स्ट संदेश भेजने में देते हैं, तो बहुत जल्दी आप धर्मशास्त्रों के सैकड़ों अध्याय आपको याद हो जाएंगे। ये अध्याय जरूरत के समय पवित्र आत्मा से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाने के शक्तिशाली स्रोत साबित होंगे। अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विनम्र मार्गदर्शक प्रभाव पाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं उसे करने, हमारे घरों को मसीह केंद्रित करने के हमारे प्रयासों को बहुत जरूरी है। उन पुरुणों प्रेरणाओं के प्रति आज्ञाकारी होकर काम करने से हमें अधिक शक्ति मिलती है। आपको अत्यधिक शांति मिलेगी जब आप आज्ञाकारी होने के अपने प्रयासों के साथ अपने आसपास के लोगों की सेवा को भी जोड़ देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत कम प्रतिभा है। विनम्रता और उदारता से उन प्रतिभाओं का उपयोग अपने आसपास के लोगों का जीवन आशीषित करने के लिए करते हैं। स्वार्थीपन अत्यधिक दुष्टता की जड़ है। बुराई का समाधान हमारे उद्धारकर्ता का जीवन में दिखाई देता है। वह हमें दिखाता है कि कैसे दूसरों की निस्वार्थ सेवा में जीवन को केंद्रित करते हैं। मैंने एक सच्चाई को सीखा है जो कि मेरे जीवन में कई बार दोहराई गई है, जिसमें एक परिपूर्ण नियम है जिसे मैं जान गया हूं। यह परमेश्वर की शक्ति के संबंध में आज्ञाकारिता और उसकी सेवा की परिभाषित करती है। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके बच्चों की निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, इसका प्राकृतिक परिणाम परमेश्वर की शक्ति है। ऐसी शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी क्षमता से अधिक कर सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण, हमारी प्रतिभाएं, हमारी योग्यताएं का विस्तार होती है क्योंकि हम प्रभु से शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। उसकी शक्ति शांति से भरे घर को स्थापित करने के लिए एक मूलभूत अंग है। जब आपका घर उद्धारकर्ता पर केंद्रित होता है, यह प्रतीकात्मक रूप से न केवल आपके घर के परिवार के लिए बल्कि आपके मित्रों के लिए भी एक आश्रय बनता है जो कि अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। वे उस शांति के ओर खिंचे आएंगे जिसे वे यहां महसूस करते हैं। ऐसे मित्रों को अपने घर में स्वागत करें। वे उस मसीह केंद्रित वातावरण में फलेंगे फूलेंगे। अपने बच्चों के मित्रों के मित्र बने, उनके लिए एक योग उदाहरण बने। महानतम आशीषों में से एक इस संसार को दे सकते हैं वह मसीह केंद्रित घर की शक्ति, जहां सुसमाचार सिखाया जाता है, अनुबंधों का पालन किया होता है और भरपूर प्रेम मिलता है। वर्षों पहले मिशन भ्रमण के बाद मेरी पत्नी जिनिन ने मुझे एक एल्डर के विषय में बताया जिससे वह मिली थी। जिनिन ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने उसके जवाब से वह आश्चर्यचकित हुई, उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसने आगे बताया उसके जन्म के बाद उसकी मां ने उसे एक अनाथालय को दे दिया। उसने अपना बचपन एक परिवार से दूसरे परिवार जाने में बिताया। एक किशोर के रूप में सुसमाचार पाकर वह आशीषित हुआ था। एक प्रेमी वार्ड परिवार ने उसे मिशन सेवा का अवसर पाने की मदद की थी। बाद में जिनिन ने मिशन अध्यक्षा की पत्नी से इस अल्डर के विषय में पूछा था। उससे पता चला कि कुछ महीने पहले यह एल्डर तबियत ठीक न होने के कारण मिशन होम में रहा था। इस समय के दौरान उसने उनके परिवार के साथ पारिवारिक घरेलू संध्या में शामिल हुआ। मिशन क्षेत्र में वापस जाने से पहले उसने मिशन परिजन से पूछा, क्या मिशन समाप्त होने से पहले एक या दो दिन में मिशन होम में दोबारा रह सकता हूं? वह जानना चाहता था मसीह केंद्रित परिवार कैसे काम करता है। वह अपने परिवार को उनके परिवार के आदर्श पर स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार का घर पाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं उसे करें, उन तक पहुंचें जो कठिनाई में रहते हैं, एक सच्चे मित्र बने। इस प्रकार की अनंत मित्रता उस रोड़ी के समान होती है जो जीवन के खड्डों को भरती है और हमारे यात्रा को निर्विघ्न और अधिक रोचक बनाती है। इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ पाने के स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक खजाने की तरह संजो कर रखने और बांटने के लिए होना चाहिए। अपने घरों में एक दूसरों का स्वागत करें जिन्हें ऐसे अनुभव बल से बल पलने की जरूरत है। कुछ अंतिम विचार उनके लिए कहता हूं जो परिवार से उस सदस्य से प्रेम करते हैं जो सही चुनाव नहीं कर रहे हैं। यह हमारे धैर्य और सहनशीलता को चुनौती दे सकता है। हमारे प्रभु में उसके समय में भरोसा करने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थनाओं और बचाने के प्रयासों को सकारात्मक जवाब आएगा। सेवा करने, आशीषित करने और निर्मलता से भविष्य की इच्छा को स्वीकार करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वह हम सब करते रहें। हम विश्वास करते हैं और याद रखते हैं कुछ बातें जिन्हें प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। वह हमें अपने बोझ को अब उसके चरणों में अर्पित करने का निमंत्रण देता है। विश्वास के साथ हम जान सकते हैं हमारा यह भटका हुआ प्रियजन अकेला नहीं है, लेकिन एक प्रेमी उद्धारकर्ता की देख रेख में है। दूसरों की भलाई को पहचाने, उनकी कमियों को नहीं। कभी कभी इस कमी को दूर करने के लिए उचित ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन हमेशा उसके सद्गुणों को बढ़ावा दें। जब आपको लगता है कि आशा की एक छोटी सी किरण है, यह वास्तव में एक किरण नहीं लेकिन जीवन बचाने की एक शक्तिशाली और दिलासा देने की कड़ी है। वह आपको दिलासा देगी कि आप भयभीत ना हो। योग्यता से जीने का प्रयास करें और प्रभु में अपना भरोसा रखें। हम चिंता करने की जरूरत नहीं है यदि हम उन सब कामों को एक साथ नहीं कर पाते जो प्रभु हमसे करने के लिए सलाह देता है। उसने सब कामों को उचित समय और मौसम के विषय में भी कहा है। मार्गदर्शक हमारे लिए सच्ची प्रार्थनाओं के जवाब में वह हमें उससे करने का निर्देश देगा जिसे जीवन के प्रत्येक दौर में महत्व दिया जाना चाहिए। एक समय में एक नियमित कदम लेकर हम सीखते हैं, विकसित होते हैं उसके समान और बनते रहते हैं। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह का सुसमाचार पर मजबूती से आधारित एक आज्ञाकारी जीवन जीने से हमारे घरों में शांति और आश्रय का महानतम आश्वासन मिलता है। फिर भी बहुत सी चुनौतियां या कष्ट होंगे, लेकिन अशांति के बीच भी हम आंतरिक शांति और गहन सुख का अनुभव कर सकते हैं। मैं गवाही देता हूं, यीशु मसीह का प्रायश्चित भरपूर शांति का स्रोत है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।